તારીખ 22/10/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 212 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 84.
બહુ તીવ્ર રસ આવે ઓટોમેટિક બીજી જગ્યાએ છે તો શક્તિ રોકાતી બંધ થઈ જાય. વાંચન માંથી શું છે કે ખ્યાલ આવ્યો સામાન્ય રીતે શું છે કે ધર્મ છે એ રૂઢિનો વિષય છે અને અંધશ્રદ્ધાનો વિષય છે એ મને ખ્યાલ હતો. અને અંધશ્રદ્ધાને હું ધિક્કારતો હતો. આઈ વોઝ આઈ ઓલવેઝ હેટિંગ, મને ઘૃણા હતી કે આ જે લોકો મંદિરોને લઈને બેઠા છે અમારા લોકો જે વૈષ્ણવોમાં એ લોકો અંધશ્રદ્ધાનો અનડ્યુ એડવાન્ટેજ લે છે અને લોકોને પાસેથી લૂંટ કરીને પોતે તારા માના કરે છે. અને એ લોકોનું બહુ લક્ઝરિયસ લાઈફ હોય છે, ખાલી સ્ટ્રેસ અને ધાર્મિક હોય છે, બાકી એની પોતાનું ડોમેસ્ટિક લાઈફ બહુ જ લક્ઝરિયસ હોય છે. આ મુખિયાજી વગેરે તો લગ્ન વગેરે પણ કરે છે. એટલે તો એમ લાગતું હતું કે આ તો બધું આમાં તો ક્યાંય, એટલે એક જાતની જે સાંપ્રદાયિક ધર્મની પકડ હોય એના બદલે એ ઉલટી વાત હતી. ત્યાં ધિક્કાર અને ઘૃણા આવતી હતી, એ પકડમાંથી તો છૂટવાનો કાંઈ પ્રશ્ન નહોતો. એ ખાલી ન્યુટ્રલ વાત શું હતી કે આમાં ન્યુટ્રલી જોવું છું કે શું છે. તો મેં કહ્યું કે આ તો રૂઢિ કે રિવાજ કે અંધશ્રદ્ધાનો વિષય નથી, આ તો સાયન્સ છે, વિજ્ઞાન છે. અને વિજ્ઞાનમાં સુખ દુઃખનો જો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો હોય તો આ તો બહુ મોટી વાત કહેવાય. એ દ્રષ્ટિએ પછી જે સમજાય છે સાયન્ટિફિક વિઝનથી જે સમજાય છે એ વધારે ક્લિયર સમજાય છે અને વધારે સારું સમજાય છે. અને એમાં પ્રેક્ટિકલ સાયન્સ તો એક પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટનો પ્રકાર છે આખો, તો એ દ્રષ્ટિએ પછી પ્રેક્ટિકલ સાઈડમાં જવાનો વધારે બી. वांछा या इच्छा के अर्थ में काम शब्द प्रयुक्त होता है तथा पंचेंद्रिय विषय के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है. काम शब्द नो प्रयोग शुं थाय छे? इच्छा वांछा ने पण काम कहवाय छे. पंचेंद्रिय विषय प्रतिदिन जीव के परिणाम है उनको भी काम शब्द से बोला जाता है. अनन्य अर्थात जिसके जैसा दूसरा नहीं, सर्वोत्कृष्ट. अनन्य शब्द का क्या अर्थ है? अनन्य माने जिसके जैसा दूसरा नहीं, अन्य नहीं, उसको अनन्य, इसके बराबर का कोई नहीं, उसको अनन्य कहते हैं, यानी सर्वोत्कृष्ट. अनन्य भक्ति भाव, अनन्य में अनन्य भक्ति भाव, अर्थात जिसके जैसा दूसरा नहीं है ऐसा भक्ति पूर्वक उत्कृष्ट भाव, इसको अनन्य भक्ति भाव कहने में आता है. अनन्य भक्ति भाव
हाँ
सर्वोत्कृष्ट भक्ति भाव ऐक्य भाव, पराभक्ति भाव, वो सब उसमें लिखा हो सकता है। पराभक्ति को भी सर्वोत्कृष्ट भक्ति कह सकते हैं। सर्वोत्कृष्ट का दूसरा अर्थ ही परा, परा लिया है। और ऐक्य मैंने इसमें कोई अंतर नहीं है, उसको ऐक्य कहते हैं। या अन्य पड़ा नहीं रहे, इसको भी अनन्य कहते हैं। दो में अन्य पड़ा रहता है, एक में, एक के भाव में अन्य पड़ा नहीं रहता, उसको भी अनन्य भक्ति भाव कहते हैं। मुमुक्षु वैजनाथ के योग मार्ग के, मुमुक्षु वैजनाथ योग मार्ग के अच्छे परिचय वाले हैं ऐसा जानता हूं। तो अन्य मत के जो है उनकी चर्चा करते हैं। सद्वृत्ति वाले योग्य जीव है, जिस पद का आपने साक्षात्कार पूछा वह अभी उन्हें नहीं हुआ है, मैंने आत्म साक्षात्कार उसको हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा पूछा तो उसको नहीं हुआ है। ठीक है, योग मार्ग के अच्छे परिचय वाले हैं, सद्वृत्ति वाले भी है, लेकिन आत्म साक्षात्कार उसको नहीं हुआ है। योग मार्ग में क्या होता है? योग मार्ग में ध्यान की, योग की जो क्रिया है उसमें मानसिक शांति सामान्य मनुष्य को भी आसानी से उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। और यही परिस्थिति इसको भ्रांति में पड़ने का ज्यादा कारण है। पिछले टाइम हम बिरला लिखा है ना, तीन दिन पहले घाटकोपर में, घाटकोपर में ऐसे एक व्यक्ति के साथ मिलना हुआ, तो योग मार्ग के ऐतिहासिक थे। और योग मार्ग से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें, कृपाल देव के ग्रंथ का भी अच्छा अभ्यास था। और कृपाल देव के वचनामृत में भी जो जहाँ जहाँ कोई बात ऐसी आवे तो वो अपने संगठन में घटा लेते थे, जब कहा ऐसी बात नहीं अपेक्षा नहीं थी, फिर भी तो वो उस बार वो योग मार्ग में ढले हुए थे। और इनके जो अनुयायी लोग थे उसमें से वो हीरा बहन आई थी ना, इसकी एक परिचित बहन थी, वो आई थी। तो लेकिन मैं 7 साल से योग मार्ग की साधना करता हूँ, ये मेरे गुरु हैं, मुझे आपको इसके पास ले जाना है। और अब मैं दूसरे को भी योग मार्ग का ज्ञान करा सकती हूँ, मुझे भी आत्मशांति बहुत है, हम आत्मशांति मानते बहुत है। और तो उसको तो साक्षात्कार हो गया है, हमारे गुरु को भी हो गया है, ऐसा है वैसा है। तो आत्म साक्षात्कार हो गया है तो फिर आप हमसे क्या चाहते हो, कि नहीं इस विषय में थोड़ा पूछना है। तो इनको जो पूछने का प्रश्न था तो हमने तो सीधा पकड़ा कि आपको शंका है, में आपको तो शंका है, आत्मा साक्षात्कार हो जाता है वो निशंक हो जाता है, इस तरह से आप पूछते हो तो शंका में पड़े हो, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि बात तो सही है। हमको जानना था हम सही है या हम सही नहीं है, सही है या नहीं है ये बात ही बता देगा आप सही नहीं है। फिर बोले तो फिर इसका क्या प्रोसेस है, हम तो योग मार्ग में लगे हुए हैं, इस तरह से बहुत शांति रहती है, वो है सांसारिक जीवन में भी हमारी इच्छाएं संबंध पड़ गई है, ऐसे है। मतलब छोटी उम्र की मैरिड लेडी थी, फिर वो 7 साल से तो हम ब्रह्मचर्य में अच्छी तरह से रह सकते हैं, वैसा है वैसा है, बहुत बात तो ठीक है, लेकिन आत्म साक्षात्कार की बात अलग है, वो बात कोई दूसरी होती है। इसके लिए ऐसा प्रोसेस है। कृपा गुरु के उनके वचनामृत को जब आप स्वीकार करते हो तो देखो क्या क्या बात लिखी है, सिर्फ 2-5 बात भी पॉइंट आउट किया तो उसको लगा कि बात तो कोई अलग है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी जिज्ञासा रही तो बच गई हो, वरना बचना मुश्किल है इसमें, इतने फिट हो जाते हैं। इसको गुरु को भी मिले हम तो लगा कि ये तो छूट सकते हैं, वो गुरु नहीं छूटेगा, वो तो गुरु बन के बैठ गया है तो वो नहीं छूट सकता है। वो जिज्ञासा में रहता है, मध्यस्थता में आता है, सरलता में रहता है, वो छूट सकता है।
मानसिक शांति और आत्मिक शांति में क्या डिफरेंस है और मानसिक शांति से हमें क्या-क्या नुकसान होता है और उस नुकसान से कैसे बचा जाए।
हाँ, वो भी चर्चा चली थी, हमने वो भी प्रश्न निकाला था। तो मानसिक शांति और आत्मशांति में क्या तफावत है वो आपको समझना जरूरी है। आत्मशांति तो विज्ञान के प्रयोग के बाद पैदा होती है, निर्विकल दशा में विज्ञान करते करते फिर निर्विकल दशा होती है। तो उसमें मानसिक शांति वाला जो मंद कषाय का कण है उससे भी भेद ज्ञान होता है, तब आत्मिक शांति आती है। और मानसिक शांति को जो आत्म शांति मान लेते हैं उसको भेद ज्ञान तो होता नहीं, और मानसिक शांति जो कषाय कण है उसको ही वो चिपकता है, उसको ही वो पकड़ता है और उसमें ही आत्म शांति मान लेता है। तो वहाँ तो मानसिक शांति में जो कषाय कण है उससे भिन्न होने का तो प्रकार ही नहीं रहा, तो भेद ज्ञान का तो प्रोसेस ही वहाँ नहीं है। वहाँ तो आप जो दूसरे प्रयोग में चढ़े हो तो उपयोग को अचंचल करने के लिए या योग के ध्यान के प्रयोग में, तो वो तो मन वचन काया के साथ आपका जो परिणाम है वो काम करता है। तो मन वचन काया तो पुद्गल है, मन भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, काय भी पुद्गल है, और पुद्गल से भिन्नता करना है उतना नहीं, पुद्गल आश्रित परिणाम से भी भिन्नता करना है, यही भेद ज्ञान का स्वरूप है। तो वो प्रोसेस में तो आए नहीं, जो शांति हुई इसको आत्मशांति मान लेते हैं, तो उससे तो भेद ज्ञान करना है तब तो आत्मशांति आएगी। ये लाइन थोड़ी अलग करती है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। मानसिक शांति है वो अशांति का ही एक स्वरूप है जो मंद अशांति है, क्योंकि आत्मिक शांति एक बिल्कुल निराकुल परिस्थिति होती है जिसमें अशांति का अभाव है। अशांति का मंद होना एक बात है और अशांति का अभाव होना ये बिल्कुल दूसरी बात है। एक में अशांति का सद्भाव है, अस्तित्व है, दूसरे में अशांति का नास्तित्व है। इतना बड़ा अंतर है, अस्ति नास्ति का अंतर इतना बड़ा है कि जीवन मृत्यु का अंतर हो उतना अंतर है। मुर्दा वो भी शरीर है और जिंदा रहना वो भी शरीर से देखा जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसमें नहीं है तो रिएक्शन आएगा बड़ा है। और पता चलता है कि सोए हुए हैं, श्वासोश्वास चलता है तो अस्तित्व को नजर आता है, तो कोई उपाधि नहीं आती है, बहुत बड़ा अंतर है।
आत्मिक शांति जो होती है तो मुमुक्षुता की भूमिका में ऐसा जो प्रतीति का क्या स्वरूप होता है जिससे ये जीव को विश्वास होता है कि वो आत्मिक शांति की ओर लेके ही जा रहा है, उसमें शांति का क्या स्वरूप होता है?
उसमें जो प्रोसेस है, जिस क्रम का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में चले तो आत्मिक शांति आएगी, क्योंकि तो आखिर में तो विभाव से भेद ज्ञान करते 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 मेरे विकल्प अनुभव में आएगा, तो उसको तो कहीं भ्रांति में पड़ने की जगह नहीं है, सही यथार्थ लाइन में आता है उसको। और जो यथार्थता में चलता है तो उनको मानसिक शांति में आत्मशांति का भ्रम हो जाता है, तो वहाँ वो पकड़ में आ जाता है, उसको नुकसान होता है, ग्रेट विख्यात में तुम्हारा आ गया।
अशांति और आकुलता में आकर के भी जीव को ऐसी दृढ़ प्रतीति रहती है कि ये भी हमारे को पूर्ण शांति की ओर ले जाएगा, हमारा प्रयास वो सही है।
उनको क्या है कि परिभ्रमण से छूटना है, तो सुविचारणा में जो आकुलता आई वो परिभ्रमण छूटने के कारण से आई है, परिभ्रमण छूटने के हेतु से अशांति खड़ी हुई है, संसार के प्रयोजन से अशांति खड़ी नहीं हुई है। तो वो अंतर है उसमें, उसका सब्जेक्ट जो है वो अलग है, तो उसमें तो वैराग्य आ गया। तो वो आकुलता वास्तव में जो संसारिक आकुलता है उस जाति की नहीं है, उसका जाति का भेद है, उससे भी उसको पता चलता है, वो बात नहीं है। लोग जिस संसार के पदार्थ के पीछे तड़पते हैं वो मेरी बात नहीं है, मेरी बात तो दूसरी है, मैं मेरी शांति के लिए तड़पता हूँ। तो शांति के लिए जो तड़पन वाली अशांति है वो शांति को ले आएगी, वो उसका प्रतीति में आता है, उसको विश्वास का कारण नहीं है। हाँ, इसमें क्या है कि कषाय की मंदता वो चारित्र मुख में जाता है और दर्शन मुख की मंदता को मिथ्यात को गालने वाली चीज है। तो दो का डिफरेंस अगर नहीं जो समझता है वो कषाय की मंदता में फंसता है। इसलिए ये कहने में आता है शुरू से ही हमारा प्रारंभ इस सिद्धांत से होता है कि मोक्ष मार्ग में पुण्य पाप की गिनती मत करो, क्योंकि मोक्ष मार्ग पुण्य पाप से परे की चीज है। इसलिए कोई मोक्ष मार्गी आत्मा से ऐसा नहीं सोचेगा कि हम भवभ्रमण करते करते स्वर्ग का भव करते करते मोक्ष में जाए तो ठीक है, नरक में हमें नहीं जाना है क्योंकि वहां प्रतिकूलताएं हैं, ये पाप का फल है ये पुण्य का फल है। आत्मार्थी तो वो सोचेगा कि पाप का फल पुण्य का फल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको तो हर हालत में हमारा मोक्ष मार्ग में ही जाने का अभिप्राय है। तो पूर्व कर्म का उदय पाप का भी आएगा, उनको हर एक को आता है, इनको भी आएगा पर पुण्य का भी आएगा, कि दोनों में ये अच्छा ये बुरा वो बात नहीं लेगा कि अरे पुण्य का उदय आया तो अच्छा है हम आत्म साधना ठीक कर पाएंगे, अगर पाप का उदय आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे, वो बात उनके लिए नहीं होती। तो उनकी लाइन वहां से डिफर हो जाती है कि हमें को हमको कसाई की तीव्रता मंदता से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो अज्ञान मिथ्यात्व टालना है। जी भवभ्रमण तो इससे मिटेगा कि अज्ञान मिथ्यात्व मिटने से भवभ्रमण मिटेगा, इसलिए वो उस लाइन पर जाता है, वो दशमों की मंदता की लाइन पर चढ़ता है जबकि दूसरे कषाय की मंदता की लाइन पर चढ़ता है। बस यही अंतर है, जो अंतर है वहाँ से अंतर पर
कषाय
रस तो ऐसा ही ऐसा रहता है, भरा हुआ दबा हुआ रहता है और कषाय ऊपर ऊपर से बंद होता है, अंदर में तो उतना ही भरा रहता है। उनका रिलेशन है दर्शन हो के मंदता के साथ, हाँ इसलिए कषाय मंद करना नहीं है, कषाय रस मंद करना है या दर्शन हो मंद करना है। ठीक है, अब मुमुक्षु वैद्यनाथ को कृपारूपे मिले नहीं है लेकिन वो उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है वो जानते हैं। देखो ज्ञान कितना 24 साल की उम्र में परिपक्व है, पूर्व काल में उत्तर दिशा में विचरने के बारे में उनसे उनके मुख से श्रवण किया है तो उस बारे में अभी तो कुछ लिखा नहीं जा सकता, परंतु इतना बता सकता हूँ कि उन्होंने आपसे मिथ्या नहीं कहा है। उत्तर दिशा में मैंने उत्तर हिंदुस्तान में यूपी में राजस्थान यूपी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश तो थोड़ा बीच में है लेकिन राजस्थान का ऊपर वाला भाग यूपी का भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग है, वहाँ दिगंबर जैन का प्रभाव ज़्यादा है। तो उसके बारे में उनके मुख से श्रवण किया है कि वहाँ धर्म की प्रभावना वहाँ अच्छी हो सकती है, तो उसके बारे में मैं अभी कुछ लिख नहीं सकता हूँ लेकिन इतना बता सकता हूँ उन्होंने जो किया है वो सही कहा है, मिथ्या नहीं की कहा है। और आगे भी एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस देह का जन्म काठियावाड़ में सौराष्ट्र में हुआ है, अगर गंगा यमुना के बीच वाले प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना तो उत्तर प्रदेश में से चली है, गंगा इधर बंगाल में आई, यमुना आगे जा करके मिलती है गंगा को, लेकिन दो बीच का प्रदेश है यूपी है, अगर इस देह का जन्म वहाँ हुआ होता तो इस जन्म के प्रभाव ना बहुत होते, वो लिखा है, वो लिखा है। तो बात सही है, हमको भी याद लगता है तो वहाँ बहुत चांस है, धर्म प्रभाव का चांस यूपी मध्य प्रदेश में जितना है उतना हिंदुस्तान में इस धर्म के लिए कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है, वहाँ श्वेतांबरों की वस्ती भी कम है। देहरादून हम गए तो वहाँ स्वाध्याय करते थे मंदिर जी में, तो हम पूछा कि यहाँ कितने मंदिर हैं, तो तीन मंदिर हैं, तीनों दिगंबर है, तो यहाँ श्वेतांबर है ही नहीं, जैन मैंने दिगंबर, जैन मैंने श्वेतांबर वो मान नहीं समझते, सरानपुर देहरादून सब दिगंबर ही दिगंबर है ना, जितने भी जैन। तो उन लोगों के लिए बहुत आसान है क्योंकि उन लोगों को निषेधाने का सवाल नहीं है, जो भी बात आएगी उसमें हम अपने आचार्यों में उतने ग्रंथों में उनको विश्वास है, तो विश्वास दिलाने की बात नहीं है, दूसरे को तो विश्वास दिलाना पड़ता है कि कुंद कुंदाचार्य हैं वो सही कहते हैं, उनको तो वो बात ही नहीं है, कुंद कुंदाचार्य तो गलत के वो बात ही उनको विकल्प भी नहीं आएगा, उसको सवाल ही नहीं। हम जो है वो महत्वपूर्ण पैराग्राफ पत्र का, जिसके वचन बल से जीव निर्वाण मार्ग को पाता है, ऐसी सजीवन मूर्ति का योग पूर्व काल में जीव को बहुत बार हो गया है, ज्ञानी नहीं मिले हैं, सत्पुरुष नहीं मिले हैं तो बात नहीं है, बहुत बार मिले हैं कि जिसके वचन बल से जीव निर्वाण मार्ग को पाता है, ऐसा अच्छे से अच्छा योग मिला है, परंतु उसकी पहचान नहीं हुई है, जो कहीं कमी रह गई है तो उस बात की रही है कि पहचान नहीं हुई है, पहचान होती तो बात दूसरी हो जाती, पहचान नहीं हुई तो बात दूसरी रह गई। एक पहचान होने से ही वो जीव निर्वाण पद का अधिकारी हो जाता है, यानी सत्पुरुष की पहचान ये निर्वाण पद का आरक्षण है, रिजर्वेशन है, ऐसा कह दे तो चले, सिद्ध पद का रिजर्वेशन यहाँ पड़ा है, सब पुरुष के ज्ञानी पुरुष सही कहता है बस। तो ये सारा जो पैराग्राफ है वो उस पर है कि जिसको पहचान होती है उसको क्या होता है, या उसको क्या हो जाता है, होता है मतलब हो जाता है, इस पर से पूरा पैराग्राफ होता है। परंतु उसकी पहचान नहीं है, जीव ने पहचान करने का प्रयत्न उचित किया भी होगा, बहुभाग तो जीव भोग संज्ञा में चलते हैं, पहचान करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, कोई जीव ऐसा कभी है कि कभी पहचान करने का प्रयास भी करता है, वहां तक आगे बढ़ता है, तथापि जीव में जड़ जमाई हुई, जड़ मैंने मूड़िया मूल मासूम जो मूल शू जामेला से कई जातना मूल जामेला से जीव में जमाई हुई सिद्धि योग आदि रिद्धि योग आदि और दूसरी वैसी कामनाओं से जीव की अपनी दृष्टि मलिन थी। ऐसे महात्मा पुरुष मिलते हैं तो इसके संयोग से हमको अनुकूलताएं हो जाएगी, प्रतिकूलताएं हट जाएगी, या कुछ चमत्कार वो जानते हैं, चमत्कारिक होते हैं, वचन सिद्धि वाले होते हैं, जो बोलते हैं ऐसा हो जाते हैं, इस प्रकार के भौतिक पदार्थों की कामना और इच्छा जी हो रह गई है। यदि दृष्टि मलिन हो तो वो मलिन दृष्टि है, यदि दृष्टि मलिन हो तो वैसी सतमूर्ति के प्रति भी बाह्य लक्ष्य रहता है, तो बाह्य लक्ष्य रहता है क्या कि उसके अंतरकरण के ऊपर लक्ष्य नहीं जाता है, तो बाहर में क्या क्या करते हैं, कैसे भक्ति कराते हैं, कैसे शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं, कैसे कितने कितने त्याग हैं, क्या क्या उनका प्रभाव बाद में कितना है। मैंने जो बाहर के जितने भी चिन्ह हैं त्याग के, वाणी के, रहन सहन के, जो भी हैं पर्सनालिटी, बाह्य व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, वो सब प्रकार लिखने में आता है। उससे जो प्रभावित रहता है वो भी वही कारण से होता है, बाह्य दृष्टि उसी कारण से है कि अपने जो बाह्य पदार्थ के प्रति आसक्ति है, सुख बुद्धि है, आधार बुद्धि है, उसी कारण से ऐसे सतमूर्ति के योग में भी वो बाह्य दृष्टि वाला दृष्टिकोण छूटता नहीं है, चालू रहता नहीं, जिससे पहचान नहीं हो पाती। तो पहचान करने वाले को ये बाह्य लक्ष्य जो है इसको छोड़ करके, उसको बाध करके पहचान के क्षेत्र में अपना उपयोग लगाना है। और जब पहचान होती है तो, जब पहचान होती है तब जीव को कोई ऐसा अपूर्व स्नेह आता है, अपूर्व स्नेह कहो, अपूर्व प्रेम कहो, 394 में कहा अपूर्व प्रेम और अचल प्रतीति। प्रतीति मैंने पहचान से उत्पन्न हुई प्रतीति अचल होती है, वो तो किसी प्रसंग में विचलित नहीं होती, इसलिए उसको अचल प्रतीति कहते हैं। और अपूर्व स्नेह, अपूर्व प्रेम आता है जिससे कि उस मूर्ति के वियोग में, क्या अपूर्व स्नेह आता है कि उस मूर्ति के वियोग में एक घड़ी भर भी जीना उसे विडंबना रूप लगता है। एक घड़ी भी उसको वियोग में रहना बहुत बड़ी विटंबना उसको लग जाती है, बर्दाश्त नहीं होता। अर्थात उसके वियोग में यदि रहना पड़ता है तो, क्योंकि बाहर की परिस्थिति पूर्वकर्माधीन होती है, चाहे लाख चाहे तो भी उसमें अंतराय आता ही रहता है, और ये जीव का खुद का स्वयं का भूतकाल का अपराध उसमें कारण है, और कोई कारण नहीं। उसके वियोग में वह उदासीन भाव से उसी में वृत्ति रखकर जीता है। वियोग का काल में भी उनके जो हृदय है उसमें उदासीनता प्राप्त हो जाती है, और इसकी वृत्ति एक ही जगह रहती है कि जो सतवृत्ति का अपने योग हुआ है उसमें उसकी वृत्ति रहा करती है। अन्य पदार्थों का संयोग और मृत्यु, ये दोनों समान हो गए होते हैं, वरना संसार में क्या है कि अच्छे अच्छे पदार्थ का संयोग होता है तो सुखमय जीवन लगता है, और मृत्यु और मृत्यु के कारणभूत प्रसंग आता है तो दुखमय लगता है। उनको दोनों समान है कि अगर कोई पदार्थ अच्छे अच्छे संयोग हुए तो क्या है, हमें क्या उसमें से लेना है, क्या इसमें से हमें सुख थोड़े लेना है कि नहीं। मृत्यु आ जाए तो ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि हमको तो जो संयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मृत्यु आए तो भी हम तो उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हमारे इसके बिना जीवन वो जीवन नहीं है, तो वो तो दोनों समान है इसके लिए। अन्य पदार्थों का संयोग और मृत्यु, ये दोनों उसे समान हो गए होते हैं, समान हो गए होते हैं। ऐसी दशा जब आती है, तब जीव को मार्ग बहुत निकट होता है, ऐसा समझे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दशा जब नहीं आती है वहाँ तक मार्ग निकट नहीं है, ऐसा समझे। दोनों बात साथ में अस्ति नास्ति का ले लेना है। ऐसी दशा आने में, हमें ऐसी दशा क्यों नहीं आती है वो बात भी लिख दी है कि ऐसी दशा आने में माया की संगति बहुत विटंबनामय है, यानी कि ऐसी दशा नहीं आने में जीव को माया की संगति है। माया की संगति मैंने क्या कि अन्य पदार्थ के प्रति उसका स्नेह ज़्यादा है, या तो स्नेह सत्पुरुष के प्रति रहे, या तो स्नेह बाकी के पदार्थ के प्रति रहे जो उनके परार्थ के अधीन संयोग रूप होते हैं, उसमें उसका स्नेह रहता है, उसमें उसका प्रेम रहता है। को बात मिल जाता है। परंतु यही दशा लाने का जिसका दृढ़ निश्चय है, क्या कि यही दशा हमको लानी चाहिए, उसका जो दृढ़ निश्चय जिसको है उसे प्राय अल्प समय में यह दशा प्राप्त होती है। तो हमने इसका रास्ता भी बता दिया, पत्र लिखा तो उसकी जानकारी होगी कि ऐसी दशा आनी चाहिए। तो ऐसे दशा लाने का जिसका दृढ़ निश्चय है कि हमको इस दिशा में आना ही है, अगर इस दिशा में हम नहीं आएंगे तो मार्ग की प्राप्ति होना निकट है और इसी दशा वाले को ही निकट है, तो उसका जिसको दृढ़ निश्चय हो गया है उसको आसानी से वो दशा प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी ऐसी बातें वो सत्पुरुष होकर के लिखते थे, उसमें थोड़ी खुद को भी तकलीफ होगी क्योंकि सज्जन मूर्ति के प्रति क्या क्या होना चाहिए, कैसी भक्ति होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, कितनी महत्ता आनी चाहिए, वो भगवान को भी गौण करता है। कल वो प्रश्न निकाला नहीं वो दिगंबर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, कह रहे भगवान मूर्ति के गौण करके सत्पुरुष को गृहस्थ तो मुख्य करे तो बहुत बड़ा तकलीफ हो जाए, ऐसी बात है। तो ऐसी ऐसी बातें 213 में तो लिखी भी हुई है। तो आ जाते हैं कुछ सुनता नहीं है, हम क्या करें इसके साथ, ना भी दे सकते नहीं, हाँ भी दे सकते नहीं, अब करें क्या, ना देने से उनकी भावना को ठेस पहुंचती है, हाँ करने से हम खुद बंधन में आते हैं, अब क्या करें, हम तो सुनता नहीं है क्या करें। सजीवन मूर्ति से मार्ग मिलता है ऐसा उपदेश करते हुए हमने स्वयं अपने आप को बंधन में डाल दिया है। ऐसा उपदेश हमने आपकी भलाई के लिए कर किया, लेकिन हमको तो दिक्कत हो गई है, हमको बंधन में अपने आप को डाल दिया है। कि जिस उपदेश का लक्ष्य आप लोगों ने हमको ही बना बैठे हैं, फिर आप तो सत्पुरुष हैं, हम फिर आपको कैसे छोड़ेंगे, पकड़ के रखो, जाने ही मत दो। ये बात बन जाएगी, हम तो फिर कहते हैं कि देखो आप हमको मत मानिए सजीवन मूर्ति, हम तो ऐसे उस सजीवन मूर्ति के दास हैं, चरण रज हैं, हमको बंधन मत करिए, हम ऐसे नहीं, हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ है। वो तो क्या है कि जो मुनिराज होते हैं उनको अपने ध्यान में लेते हैं, हमारी ऐसी अलौकिक दशा कहाँ है कि ध्रुव क्षेत्र काल भाव का जिसको प्रतिबंध नहीं हो गए, अप्रतिबंध विहारी हो गए, हम तो बंधन में आ जाते हैं। अरे आपका राग है, आपकी भावना है, तो हम बंधन में आ जाते हैं। तो मुनियों के बंधन नहीं होता, मुनि का विहार ऐसे लिया है दिगंबर शास्त्रों में कि एक तो जंगल में रहते हैं, बस्ती में रहते नहीं। जंगल में जब रहते हैं तो नजदीक के जो जिस वन उपन में वो ठहरते हैं, नजदीक के जो गांव हैं, शहर हैं, नगर हैं, वहाँ से लोग आते हैं, पता चल गया कि वहाँ मुनिराज विराजमान हैं तो वहाँ आ जाते हैं। धर्मलोभी जीव आते हैं, कैसे लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ तो इंटेंशनली आना पड़ता है, इरादा से कुछ तकलीफ पा करके वहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई घर में नज़दीक है तो चलो अपने व्याख्यान सुन लिया, दूर है तो नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं, वो तो दूर कहीं भी वो जाएंगे, वो तो जाएंगे ही, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। तो धर्मलोभी जीवों को धर्म मिलता रहे इसलिए यहाँ ज्यादा ठहरना तो दिगंबर मुनि को नहीं, दूसरे जीवों की तो वो अनुकूलता देते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता तो उसको है नहीं, क्योंकि उसको तो तिल तुष्ट मात्र परिग्रह होता ही नहीं, इसलिए कोई चीज जिसके अनुकूलता को मिल जाए या प्रतिकूलता रह जाए वो बात उनको होती नहीं। फिर भी धर्मलोभी जीवों का अनुराग से भी वो वहां ठहरते नहीं, उतना बंधन भी वो नहीं स्वीकारते, तो उनको ख्याल में रख करके बोलते हैं कि हम तो हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ है कि जिस दशा में केवल असंगता ही रहती है वो तो केवल असंग मुनिराज होते हैं, केवल जो असंग होते हैं वो एकदम असंग दशा में रहते हैं और किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल काल का उनको लगाव नहीं रहता है। कहीं भी स्मशान में ध्यान करो या जंगल में ध्यान करो, कहीं भी ध्यान नगर के समीप हो नगर के दूर हो, एक सी परिस्थिति।
हम लोग तो छल पकड़ करके तो बैठे ही रहते हैं कि हमारे आपको अपने सारे परिणाम को सतपुरुष के सामने नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो उनका विकल्प बढ़ जाएगा। इस भूमिका में कि हम लोग कोई भी अपना परिणाम को रखेंगे सामने तो अननेसेसरीली विकल्प बढ़ेगा ही ना। जो सिर्फ प्रयोजन भूत हमको लगता है सिर्फ वो अच्छी अच्छी बातों को रखना चाहिए, संसार के हर छोटे मोटे प्रसंग को क्या रखे सामने में, अननेसेसरीली विकल्प बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के छल में तो हम खड़े ही हैं और फिर ऊपर से अगर ये बात आ जाता है कि सतपुरुष का हम ज़्यादा वो करते हैं तो वो बंधन में आ जाते हैं, हम तो और पकड़ के बैठ जाएंगे इस बात को कि जब उनको तो बंधन रूप लगता है तो उनको तो ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए कि उनको वो बंधन रूप लगे, तो छल में खड़े हम लोग तो और पकड़ के बैठ जाएंगे, हम लोग को इससे मुक्त कैसे हो वो। तो इसमें एक तरफ तो एक के बाद भाव वाला बात रहता है, फिर एक तरफ वो रहता तो हम लोग कैसे सामंजस्य बैठेंगे दोनों बातों।
देखिए परिणाम कोई कृत्रिमता से करना है या सहज होता है जिसमें करने का नहीं करने का सवाल नहीं होता है कि परिस्थिति को पसंद करते हैं, मेरा ये सवाल है। इस प्रश्न के सामने मेरा एक प्रश्न है।
सहज तो होना चाहिए पर जब तक एकमात्र बनने का लक्ष्य नहीं होता है जब तक एकमात्र ये करना उसका लक्ष्य नहीं होता तब तक तो सहज वाला जो बात रहता वो तो रहता नहीं है।
फिर विचार तो वो करना है कुछ भी स्थिति हो, आप उसको पर आपको विचार करना है, आपके परिणाम पर आपको विचार करना है। हमारा ये प्रश्न है कि आपको कृत्रिम परिणाम होना चाहिए या सहज होना चाहिए, ठीक है? तो आप सहजता की लाइन पकड़ो। ये जो प्रश्न है वो तो कृत्रिमता को ले आने वाला है,
बुद्धि का एप्लीकेशन आ गया।
हाँ, जो आपका जो प्रश्न है वो तो तुम्हारा प्रश्न तो बुद्धि कृत्रिमता को ले आने वाला है, इसलिए हमने ये प्रश्न उठाया किस तरह से काम करना चाहते हो, सहजता से या कृत्रिमता से करना है। सहजता से करो, उसी लाइन को पकड़ो, बात खत्म।
बुद्धि का एप्लीकेशन नहीं करना
मतलब क्या हुआ कि अगर पहचान आएगी तो परिणाम जो परिस्थिति बताई ऐसे हो ही जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, ये परिस्थिति बन जाएगी हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। अगर पहचान नहीं हो और सुनी सुनाई बात पर अगर हम कृत्रिमता करने जाएंगे भक्ति भाव के तो अगले को बंधन भी होगा और हमारा ठिकाना रह जाएगा, हमको कोई लाभ नहीं होगा, क्या फायदा। तो ये जो मार्ग है ना वो एकदम नेचुरल पोजिशन वालों का है, अननेचुरल नहीं।
ऐसा
तो सबको जो होते हैं कृत्रिमता भी सहज होती है लेकिन वो पसंद करने योग्य नहीं होनी चाहिए,
उसका भी खेद होना चाहिए।
हाँ, उसका भी खेद होना
चाहिए। और उस खेद का भी खेद होना
चाहिए। होती है वो तो मायातार के परिणाम है, नुकसान करता है, तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जिसकी प्रकृति या योग्यता ऐसी है तो वो सहज कृत्रिमता या मायातार कर बैठता है तो सहज होता है वो भी, लेकिन वो अच्छा नहीं है, हमारा सुधार कितना हुआ।
नहीं, मतलब खेत भी होता है और उस खेत का भी खेद होता है,
होना चाहिए। अकेले खेत करके क्या करेंगे, अकेले खेत में बैठा रहने से काम थोड़ा होगा, उनको आगे बढ़ना।
जो ईमानदारी का परिणाम करता है वो अपनी बात को रखने के लिए ही ऐसे भाव करते हैं, मतलब आपको किसी के साथ हम अपनी बात को पुष्ट करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं।
तो क्या है कि जो 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 लाइन गड़बड़ वाली हो गई उसमें तो उनको गड़बड़ कितनी होगी उसका क्या ठिकाना है, उसका तो कोई ठिकाना।
तो उस गड़बड़ से बचने के लिए यही है कि हमारा परिणाम बहुत सहज होना चाहिए कोई भी इंस्टेंस पे।
हाँ, इस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़े,
सरलता को लेकर
हम इस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़े कि हमें हमारे परिणाम में सहज परिणाम से आगे बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, सिद्धांत लेकर के हम चले तो फिर हम बनेंगे नहीं।
इसी मुमुक्षु को तो ये तो है कि सहज परिणाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे को तो पता तो लग ही जाता है कि सहज परिणाम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं पकड़ना है, पकड़ सकता है,
पकड़ सकता है तो फिर सहज परिणाम ही करना चाहिए।
हाँ ठीक है,
क्यों करे,
ठीक है ऐसा ही करना चाहिए, परिणाम तो सहज ही होना चाहिए। आज मोक्ष मार्ग से आपको सहज है, अप्रोच ऑफ दी मोक्ष मार्ग वो भी सहज, दोनों सहज परिणाम है। पर कृत्रिमता है वो इससे बिल्कुल विसंगत है, सुसंगत नहीं है। तो ऐसा जानकर के कृत्रिमता को छोड़ कर के सहजता में आना चाहिए और यही सिद्धांत को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए।
सरलता
के विषय में असरलता, फिर सरलता आएगी कहाँ से, सरलता कहाँ आएगी। हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ है कि जिस दशा में केवल असंगता ही रहती है। हमारा उपाधि योग तो आप प्रत्यक्ष देख सके ऐसा है, हम तो बंधन में वैसे ही उपाधि के बंधन में है, जो आप प्रत्यक्ष देख सकते हो तो हमको तो छोड़ दीजिए ऐसा हमको कहना है। ये अंतिम दो बातें तो हमने आप सबके लिए लिखी है, आप सबसे मैंने जो भी उनके मुमुक्षु थे 112 किसकी तरह लिखा है, त्रिभुवन माणिक है खंबातवासी मुमुक्षु भाई और उनके प्रति अंगुली निर्देशक।
यहाँ पे मुझे अपना परिणाम लिख रहे उसमें ऐसा भाव है कि जो ज्ञानियों का सनातन आचरण होता है कि गुप्त रह के वर्तन करना, तो अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं इसलिए सब तो मुमुक्षु की भूमिका में किस प्रकार का वर्तन करते
हैं उसको भी ऐसा ही होना चाहिए। मुमुक्षु भी अगर अपनी प्रसिद्धि चाहता है या अपना मान सम्मान चाहता है तो मुमुक्षु कहाँ का, तो ज्ञानी तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके पहले अगर चाहता है तो मुमुक्षुता ही नहीं रहेगी, सच्ची मुमुक्षुता में तो गुप्त रहने का ही भाव आएगा। ठीक है, हमको गुप्त ही रहना ये अच्छा है, तो प्रसिद्धि में आना वो तो एक ऐसी फिसलने की जगह है कि जहाँ से जो फिसलता है तो उसका पतन हो जाता है, मुमुक्षुता से भी वो गिर जाता है। ज्ञानी भी नहीं चाहता है और जो ज्ञानी होने वाला है वो भी नहीं चाहता है, जब तो वो ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी और चाहेगा मुमुक्षु और चाहेगा, डिफरेंट विरुद्ध चाहेगा।
कभी जैसे होता है कि अभिप्राय में नहीं भी होता है और फिर भी वो प्रसिद्ध हो जाता है,
वो तो
गुप्त रह के वर्तन करता है सब कुछ करता है फिर भी वो प्रसिद्ध अगर हो जाता है,
हो सकता है ऐसा भी वो बन सकता है, क्योंकि जैसे पाप का उदय जीव को नहीं छोड़ता है ऐसे पुण्य का उदय भी जीव को नहीं छोड़ता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे मुमुक्षु हो, उदय तो पूर्व कर्माधीन है तो बन सकता है, वो भी बनेगा तो बनेगा, इसमें चलता नहीं है जीव का, जैसे पाप का उदय में नहीं चलता ऐसे पुण्य का उदय में चलता नहीं है जीव का, ये समझ में रखना है। वरना तो करता आता हो जाएगा, जबरन कर परिस्थिति को बदलाने के परिणाम करेगा, वो भी ठीक नहीं। छोड़ना नहीं चाहिए, ये कृत्रिमता से या सहजता से सवाल उठना है हमारा। तो सहजता होती है तो वो तो परिणाम हो जाता है, करना नहीं पड़ता है तो हो जाता है, इसका क्या इलाज है?
पहले तो आया ही बात की एक समय भी विरह में रहना नहीं चाहता है,
उसको हो जाता है,
हो जाता है,
इससे हो जाता है तो हो जाता है।
अज्ञानी को भी किनका संग बंधन रूप लगता है और किनका संग असंग रूप लगता है? ज्ञानी को भी किनका संग बंधन रूप लगता है और किनका संग असंग रूप लगता
है? जबकि वो बात वाले मुमुक्षु भाइयों को जो लिखता है कि आप लोगों ने हमको बंधन कर रखा है, मेहरबानी करके हमको छोड़ो, जबकि सुभाग भाई को लिखता है कि हम आपके संग में रहना चाहता है और हम आपका सत्संग वही हमारी असंगता है, तो बात तो बदल जाती है। वहाँ नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ तो वो कहेंगे कि हर प्रकार के संग से हमको उदासीनता आती है, लेकिन एक आपके सत्संग में हम प्रतिबद्ध है, वहाँ हमारा वहाँ हमको बंधन नहीं लगता है, वहाँ तो वो प्रतिबद्धता हमसे नहीं छूटेगी, हमसे वो नहीं छूट सकती, हम क्या करें? तो उनकी योग्यता ऐसी ही है, बात तो ओपन है कि हम उस लायक बन जाए, बात खत्म हो गई कि जो अगले को बंधन नहीं लगे, वहाँ गिनती नहीं रहेगी, कृत्रिमता में गिनती रहेगी, उनकी सुविधा क्या है, असुविधा क्या है, उन सुविधा में रखें, नहीं रहे तो भी रखें। अब जब एक के वहाँ में वहाँ सुविधा असुविधा का क्या सवाल है?
एक तो होता है कि सुविधा का देखना, एक होता है पकड़ करना।
हाँ वो अलग बात होगी,
नेचुरल नहीं है वो,
हाँ वो पकड़ करना वो आर्टिफिशियलिटी है, और एक नेचुरल होना कि उनकी सब अच्छे से अच्छा व्यवस्था होना वो
तो हमने आप सबके लिए लिखी है, हमें अब कम बंधन हो ऐसा करने के लिए आप सबसे विनती है। दूसरी एक बात यह बतानी है कि आप हमारे लिए अब किसी से कुछ न कहें, यानी हमारी प्रसिद्धि मत करें, आप उदय काल जानते हैं, हमारा उदय तो आप जानते हैं, वो प्रसिद्धि के अनुकूल नहीं है, हम तो फंसे हुए हैं, 24 साल की उम्र है, 3 साल 4 साल पहले शादी हुई है, और वो बिजनेस में उतने फंसे हुए हैं, प्रसिद्धि में आकर के क्या करें? प्रसिद्धि में तो आने वाले को निवृत्ति चाहिए, तो निवृत्ति तो खुद को है नहीं, और तकलीफ बढ़ जाएगी। वास्तविकता तो यह है कि जिस काल में ज्ञान अज्ञान निवृत्त, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हुआ, नाश हुआ, निवृत्त हुआ मैंने नाश हुआ, उसी काल में ज्ञानी तो मुक्त है, प्रवृत्ति तो प्रारब्ध अनुसार करते हैं, लेकिन जिस काल में ज्ञान हुआ उसी काल से वो मुक्त हो गए हैं। देहादि में अप्रतिबद्ध है, सुख दुख हर्ष शोक में अप्रतिबद्ध है, ऐसे ज्ञानी को कोई आश्रय या अवलंबन नहीं है, आधार बुद्धि कहीं भी नहीं है, आश्रय भावना कहीं नहीं है। धीरज प्राप्त होने के लिए ईश्वर इच्छा आदि भावना होना योग्य नहीं है, भक्ति मान को तो कुछ प्राप्त होता है, उसमें कोई देश का प्रकार देखकर तटस्थ धीरज रहने के लिए वो भावना किसी प्रकार से योग्य है। ज्ञानी के लिए तो प्रारब्ध ईश्वर इच्छा सभी प्रकार एक ही भाव के एक ही सरीके के भाव हैं, उसे साता असाता में कुछ किसी प्रकार से रागद्वेष आदि का कारण नहीं है, वो दोनों में उदासीन है, जो उदासीन वो मूल स्वरूप में निरालंबन है, उसकी निरालंबन उदासीनता को ईश्वर इच्छा से भी बलवान समझते हैं, समझते हैं। यहाँ कुछ पढ़ा था तो सत्संग में प्रतिबद्ध है, और जगह प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन सत्संग में प्रतिबद्ध होते हैं।
379
का कुछ पंक्ति जिसकी प्राप्ति के बाद अनंतकाल की याचकता मिटकर सर्वकाल के लिए अयाचकता प्राप्त होती है, यानी दिन तक मिट जाती है जीव को, ऐसा जिसका वचन बल है या ऐसा जिसका योग होता है, ऐसा जो कोई हो तो उसे तरन तारण जानते हैं, उसे भजे। मोक्ष तो इस काल में भी प्राप्त हो सकता है अथवा प्राप्त होता है मानव के, परंतु मुक्ति का दान देने वाले पुरुष की प्राप्ति परम दुर्लभ है, अर्थात मोक्ष दुर्लभ नहीं, मोक्ष के दाता दुर्लभ है। बहुत भजन है सत्पुरुष के प्रति, बहुत भजन है। सुभग भाई को आपके सत्संग की अत्यंत रुचि रहती है, तथापि उस प्रसंग की प्राप्ति अभी तो निर्बल होकर ही श्री हरि को सौंपते हैं। आपके सत्संग की अत्यंत रुचि रहती है तथापि उस प्रसंग की प्राप्ति नहीं है तो अभी तो हम निर्बल होकर के श्री हरि की हरि को सौंपते हैं कि आपका ड्यूटी है हमको सत्संग में सत्संग को मिला देना, आपका सत्संग हमको मिल जाए ऐसा कर देना, इसको काम सौंपा है, कुदरत को काम सौंपा है तो कुदरत अपने आप काम करेगी। सर्व प्रकार की उपाधि आदि व्याधि से मुक्त रूप से रहते हो ज्ञानी, सर्व प्रकार की उपाधि आदि व्याधि से मुक्त रूप से रहते हो तो भी सत्संग में रही हुई भक्ति दूर होना हमें दुष्कर प्रतीत होता है। तो सत्संग से ज्ञानी पुरुष भी दूर रहना कठिन लगता है, दुष्कर लगता है। सत्संग की सर्वोत्तम अपूर्वता, क्या शब्द लिखे हैं, सत्संग की सर्वोत्तम अपूर्वता हमें अहोरात्र रहा करती है, ज्ञान दशा में 27 वर्ष है, तथापि उदय योग प्रारब्ध से ऐसा अंतराय रहता है, प्राय किसी बात का खेद हमारे आत्मा में उत्पन्न नहीं होता है, तथापि सत्संग के अंतराय का खेद प्राय अहोरात्र रहा करता है। देखो सत्संग पर कितना वजन है, सत्संग बिना के सर्व भूमि सर्व मनुष्य सर्व काम सर्व बातचीत आदि प्रसंग अपरिचित जैसे लगते हैं, एकदम पराये लगते हैं, उदासीन जैसे अरमणीय अमोहकर और रस रहित स्वभावस्तः लगते हैं, भाषित होते हैं। मात्र ज्ञानी पुरुष मुमुक्षु पुरुष અથવા મોક્ષ મેને ઉચ્ચ કોટી કે સ્વભાવ સ્વભાવ પાઈ જાય છે, અથવા માર્ગાનુસાર એક પુરુષ કા સત્સંગ પરિચિત લગતા હૈ, અપના લગતા હૈ, પ્રીતિકર લગતા હૈ, સુંદર આકર્ષક ઓર રસ સ્વરૂપ ભાષિત હોતા હૈ. એસા હોને સે હમારા મન પ્રાય અપ્રતિબદ્ધતા કા સેવન કરતે કરતે દૂસરે સંયોગ સે અપ્રતિબદ્ધતા કા સેવન કરતે કરતે આપ જૈસે માર્ગ ઇચ્છાવાન પુરુષો મેં પ્રતિબદ્ધતા કો પ્રાપ્ત હો જાતા હૈ. ઓર જગહ સે અપ્રતિબદ્ધતા હો કરતે યહાં હમારા ચિત્ત ભી પ્રતિબદ્ધતા કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ. 491 છે, 491 નો છેલ્લો પરિગ્રહ. આ દેવલાલી મેં એક વાત લખું અને આ આ પેરેગ્રાફના આધારમાં એમણે સુયોગડાંગનું એક સૂત્ર અને દ્વાદશાંગીનું અખંડ સૂત્રનો આધાર લીધો છે. આ સ્ટેટમેન્ટનો આધાર મૂળ સૂત્રમાં થઈ ગયો છે કે ભગવાને પણ મૂળ સૂત્રમાં આ વાત કરી છે.